ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु न्याय का मुद्दा उठाने की बात पर राष्ट्रपति पोडले ने दिया जोर। सरकार ने आंतरिक रोजगार प्रवर्धन दशक का किया शुभारंभ। रोजगार सृजित करने के हिसाब से सरकार आगे बढ़ी है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। और दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने के बाद उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में भूमिका न होने वाले नेपाल जैसे देशों के लिए जलवायु न्याय का मुद्दा हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठना जरूरी है। भौगर्भिक समाज द्वारा आज काठमांडू में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मानव जीवन से सीधे जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकार्य होने चाहिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि रोजगार सृजित करने के हिसाब से सरकार आगे बढ़ी है। आज राष्ट्रीय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन 2081 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्पादन उत्पादकत्व और विकास के लिए तकनीक का अधिकतम प्रयोग करते हुए तेजी से उद्यमशीलता के विकास में समूची जनशक्ति को केन्द्रित होना होगा। मौके पर आंतरिक रोजगार प्रवर्धन दशक का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि आधुनिकीकरण की ओर यात्रा दशक की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है और इसका निरंतर क्रियान्वयन होता रहेगा। सम्मेलन में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा कि घोषित राष्ट्रीय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम का प्रभावकारी क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के आर्थिक तथा विकास सलाहकार डॉ युवराज खतिवड़ा ने कहा कि अब से 10 साल में रोजगार के लिए किसी भी नेपाली को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि सरकार आगामी दशक सन 2035 को आंतरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषित किया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय हुनर विकास प्रतिष्ठान और रोजगारदाता कंपनी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत एकीकृत श्रम बाजार और सूचना प्रणाली विस्तार के लिए श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय और स्विस एजेंसी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेफिक्र होकर निवेश करने का निजी विद्यालयों से आग्रह किया है। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन के 16वें महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति का हक संविधान ने दिया है, इसलिए निजी क्षेत्र बेफिक्र होकर निवेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि निजी विद्यालयों को 5 साल के अंदर गुठी में ले जाने का प्रस्ताव कैसे आया, ये सोचकर वे भी हैरान हैं। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सचिवालय की बैठक में देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा के लिए परिवर्तनकामी सभी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ सहकार्य करने का निर्णय किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने, देश में रोजगार बढ़ाने और समाजवादी वितरण प्रणाली को स्थापित करने के लिए पार्टी द्वारा योजना बनाने का निर्णय किया गया। ये जानकारी केन्द्रीय प्रचार विभाग के प्रमुख प्रकाश ज्वाला ने दी। बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, राजतंत्रवादियों द्वारा किए गए प्रदर्शन और पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की गई। साथ ही देशभर में संगठनात्मक मजबूती के लिए सशक्त जन आंदोलन की योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि पार्टी को एकजुट और मजबूत बनाकर आगे ले जाना जरूरी है। धनगढ़ी में नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सुदूर पश्चिम प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभापति देउवा ने कहा कि यदि पार्टी सच्चे मन से एकजुट होकर आगे बढ़ती है तो 2084 के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार 7 सूत्रीय समझदारी के साथ चल रही है। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने 4 विधेयकों को प्रमाणित किया है। अध्यक्ष दाहाल ने राष्ट्रीय सभा में पेश किए गए सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2080, विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080, विधायन संबंधी विधेयक 2080 और भ्रष्टाचार निवारण प्रथम संशोधन विधेयक 2076 को आज प्रमाणित किया। संसद सचिवालय ने बताया कि इन विधेयकों को प्रमाणीकरण के लिए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास भेजा जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पहली प्राथमिकता है। आज धनगढ़ी में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि संविधान की रक्षा, संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करना और समावेशी चरित्र की राज्य व्यवस्था का निर्माण वर्तमान समय की आवश्यकता है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि नेपाली जनता के आंदोलन से हटाए गए राजतंत्र का विकल्प लोकतंत्र और गणतंत्र के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने कुछ क्षेत्रों में 2 महीने के लिए निषेधाज्ञा लगाने का आदेश जारी किया है। ये आदेश कल से लागू होगा। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जिला अधिकारी ऋषिराम तिवारी द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय के आसपास का क्षेत्र, सिंह दरबार, प्रधानमंत्री निवास बालवाटार और संसद भवन के आसपास के इलाके शामिल हैं। जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में 5 से अधिक लोगों की जमघट, नारेबाजी, जुलूस, धरना, घेराव और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। मकवानपुर के किसानों ने विषैले कीटनाशकों के विकल्प के रूप में गोबर की खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया है। व्यावसायिक कृषि के आरंभ के साथ ही फसलों में लगने वाले रोग और कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब मकवानपुर के किसानों ने प्राकृतिक उपचार अपनाना शुरू कर दिया है। मकवानपुर मनहरी गांवपालिका 1 के देवराज न्यौपाने ने सब्जी खेती के लिए आवश्यक कीटनाशकों को जैविक तरीके से तैयार कर उपयोग करना शुरू किया है। उन्होंने सालाना 50 क्विंटल सब्जी का उत्पादन कर स्थानीय स्तर पर 2.5 लाख रूपये तक की बिक्री की है। सल्यान जिला अस्पताल ने बताया है कि स्वास्थ्य बीमा की राशि समय पर न मिलने के कारण मरीजों के इलाज में समस्याएं आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान के प्रमुख डॉ अर्जुन बुढ़ा ने बताया कि बीमा बोर्ड द्वारा समय पर राशि का भुगतान न किए जाने के कारण बीमा योजना के तहत पंजीकृत मरीजों को 3 महीने में मिलने वाली दवाइयां अब 1 महीने में ही खत्म हो जा रही हैं। इससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पश्चिमी तट से कई अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ JCS ने संवाददाताओं को भेजे एक संदेश में कहा कि मिसाइलों को स्थानीय समय अनुसार करीब 2 बजे पश्चिमी तट से समुद्र की ओर दागा गया। इस संदेश में कहा गया है कि दक्षिण कोरियाई सेना ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने आज से शुरू अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की थी और कहा कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिति और खराब हो जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेनी नेतृत्व रूस के साथ युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी मांग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्स अपने यूक्रेनी समकक्षों के साथ मंगलवार को वार्ता के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर रूस के साथ शीघ्र युद्ध विराम की उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का तत्काल कोई वादा नहीं किया है। 10 दिन पहले ट्रंप और जेलेंस्की के बीच अमेरिकी व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने दावा किया था कि जेलेंस्की लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया और फिलहाल यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रूसी कब्जे में है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु न्याय का मुद्दा उठाने की बात पर राष्ट्रपति पोर्डेल ने दिया जोर। सरकार ने आंतरिक रोजगार प्रवर्धन दशक का किया शुभारंभ। रोजगार सृजित करने के हिसाब से सरकार आगे बढ़ी है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। और दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने के बाद उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।